नमस्कार भारत, तारीख 7 अक्टूबर दिन शनिवार, मैं हूं मोहन लाल शर्मा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी के दायरे में छोटे कर व्यापारियों को दी छूट।
ICDS के जो बच्चों के फूड पैकेट्स जाते हैं स्कूल्स में, ये 18% था पुरानी रेजिम में, उसको 5% किया गया।
श्रीलंका के मत्तला एयरपोर्ट का प्रबंधन भारत को दिए जाने के प्रस्ताव का विपक्ष ने किया विरोध। विवेचना में सुनाएंगे भारतीय टीम के ऐतिहासिक फुटबॉल मैचों की कहानियां।
हैट्रिक तो कभी आज तक हिंदुस्तान का कोई खिलाड़ी फुटबॉल में कभी ओलंपिक में हैट्रिक किया ही नहीं। नेवल ने क्या गोल किया, कितना नाजुक उसका पैर का टच था, देखने का लायक।
कार्यक्रम में होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार, विकास त्रिवेदी से। केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार को GST काउंसिल बैठक के बाद कई अहम फैसले लिए। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने GST के दायरे में छोटे व्यापारियों के लिए छूट का ऐलान किया। इस छूट के तहत अब छोटे व्यापारियों के लिए हर महीने GST रिटर्न की अनिवार्यता को खत्म किया गया। अब ये व्यापारी GST रिटर्न 3 महीने में भर सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने कई चीज़ों की टैक्स दरें घटाने का भी फैसला किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने महिलाओं को मुफ्त गर्भ निरोधक मुहैया कराने के नियम में बदलाव किया है। इस नियम का असर 6 करोड़ अमेरिकी महिलाओं पर होगा। अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि कंपनियों के मालिक और इंश्योरेंस कंपनियां अब अपनी महिला कर्मचारियों को मुफ्त गर्भ निरोधक मुहैया कराने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ये कंपनियां जन्म नियंत्रण के लिए मुहैया कराए जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां और दूसरे तरीके से धार्मिक और नैतिक आधार पर छूट पा सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि इस बदलाव के बावजूद ज़्यादातर महिलाओं की गर्भ निरोधक तक पहुंच रहेगी। अमेरिका की सिविल लिबर्टीज यूनियन ने इस कानून को चुनौती दी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स कहती हैं,
This is a president who supports the First Amendment, supports the freedom of religion.
राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बारे में पहले हुए संशोधन और धर्म के अधिकार का समर्थन किया। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये मुद्दा ही क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को वैध ठहराया है। राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे इंसान हैं जो संविधान में यकीन करते हैं। अगर लोगों को संविधान की कोई बात पसंद नहीं तो उन्हें कांग्रेस से उसे बदलने के लिए कहें। ये थे व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव के शब्द। साबाडोल के बाद अब कैटलोनिया के एक और बैंक कैक्सा ने अपना कानूनी मुख्यालय कैटलोनिया से बाहर ले जाने का फैसला किया है। ये फैसला कैटलोनिया में हुए जनमत संग्रह के बाद तेज़ होती आज़ादी की मांग के मद्देनज़र लिया गया। वहीं स्पेन सरकार के शिक्षा मंत्री एनिंगो मेंडेस ने कैटलोनिया में क्षेत्रीय चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने जनमत संग्रह के दौरान पुलिसिया ऑपरेशन में लोगों के चोटिल होने पर अफसोस जताया। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। तथाकथित इस्लामिक स्टेट ने अब महिलाओं को युद्ध के मैदान में उतारने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। अब तक महिलाओं को अपने लड़ाकों की पत्नी और अगली पीढ़ी के लड़ाकों को पैदा करने के लिए इस्तेमाल करने वाले इस संगठन ने अब महिलाओं को युद्ध क्षेत्र में उतारने का फैसला किया है। इस चरमपंथी संगठन ने यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया है जब इसे कई मोर्चों पर हार का सामना करना पड़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखने वाली पत्रकार एजेदे मुवेनी ने IS के लिए काम कर चुकी 20 महिलाओं का इंटरव्यू किया है। मुवेनी ने कहा, अब तक IS ने महिलाओं से लड़ाई के मैदान में उतरने के लिए कभी नहीं कहा था।
The sorts of women that I spoke to didn't go to Syria or join Islamic State with the intention.
मैंने जिन महिलाओं से बात की उनमें से ज़्यादातर महिलाएं लड़ने की ख्वाहिश लिए आयश में शामिल होने सीरिया नहीं गईं। इनमें से कुछ गृहिणी बनने गईं तो कुछ लड़ाकों की अगली पीढ़ी तैयार करने के मकसद से। मैं किसी ऐसी महिला से नहीं मिली जो लड़ने के लिए सीरिया जाना चाहती हो। तो IS के इस फैसले को मैं स्पष्ट हताशा के तौर पर देखती हूँ, क्योंकि IS लड़ाके धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। ये थे पत्रकार एजेदे मुवेनी के शब्द। अमेरिका ने सूडान पर 20 साल पहले लगाए आर्थिक प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। अधिकारियों ने कहा कि सूडान ने मानवाधिकारों के क्षेत्रों में काफ़ी काम किया है और इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ लड़ाई में सूडान का सहयोग रहा है। इन प्रतिबंधों के हटाने की शुरुआत ओबामा प्रशासन के वक्त हुई थी। हालांकि कुछ मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले की आलोचना की। इन संगठनों का कहना है कि मानवाधिकारों को लेकर असल बदलाव लाने को लेकर सूडान कभी भी गंभीर नज़र नहीं आया है। अमरीकी सरकार ने ठाड मिसाइल रक्षा प्रणाली को सऊदी अरब को बेचे जाने की मंजूरी दे दी है। अमरीका ने कहा कि $50 बिलियन का ये समझौता राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के हितों की तरफ एक अहम कदम है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। ये 1 जुलाई की बात है जब मोदी सरकार ने देश में GST को लागू किया था। सरकार ने इसे देश का सबसे बड़ा कर सुधार कहा था, लेकिन सिर्फ 3 महीने में ही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि GST को लेकर उठ रहे सवालों की तपिश ने आखिरकार सरकार को इसमें बदलाव करने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी GST की समीक्षा और बदलाव की बात कही थी। कल दिल्ली में कई घंटों तक चली GST काउंसिल की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संवाददाता सम्मेलन बुलाया और छोटे व्यापारियों के लिए हर महीने GST रिटर्न भरने की अनिवार्यता को खत्म करने का ऐलान किया।
जिनकी 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर है और इसमें लगभग 90% असेसीज कवर हो जाएंगे जो आउटसाइड द कंपोजिशन स्कीम है, वो अब मंथली रिटर्न के स्थान पर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करें। जो 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले हैं वो पुरानी व्यवस्था के मुताबिक GST 1, 2, 3, 3B सब उसी हिसाब से फाइल करते रहेंगे मंथली।
यानी कि 1.5 करोड़ रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी अब 3 महीने में GST रिटर्न भर पाएंगे। इसके साथ ही कई उत्पादों को कम टैक्स वाले दायरे में लाया गया है। खाने पीने और स्टेशनरी की कुछ चीज़ों को 28 से 18 और 12 से 5% की टैक्स श्रेणी में रखा गया है।
स्लाइस्ड ड्राइड मैंगोज 12 से 5% किया गया, खाखड़ा एंड प्लेन चपाती 12 से 5 किया गया। ये जो ICDS के जो बच्चों के फूड पैकेट्स जाते हैं स्कूल्स में, ये 18% था पुरानी रेजिम में, उसको 5% किया गया। अनब्रांडेड नमकीन, अनब्रांडेड आयुर्वेदिक मेडिसिंस 12 से 5, प्लास्टिक वेस्ट 18 से 5, रबर वेस्ट 18 से 5, पेपर वेस्ट 12 से 5।
तो अरुण जेटली बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने कर के दायरे को घटाया है, GST में बदलाव किए हैं। लेकिन कई जानकार मानते हैं कि देश में विकास दर घटी है और इसके प्रमुख कारण नोटबंदी और GST है। ऐसे में GST की संरचना में सुधार की आवाजें इसके लागू होने के बाद से ही उठ रही थी। हमारे सहयोगी आदर्श राठौर ने आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार MK वेणु से संपर्क साधा और सबसे पहले सवाल यही रखा कि इस बदलाव की अहम बात क्या है।
तो सबसे अहम चीज इन्होंने जो करी है, जिससे छोटे उद्योग बड़े परेशान थे, जिनका बिजनेस टर्नओवर कम होता था और उनके लिए महीने में 3 बारी रिटर्न फाइल करना ये बड़ा मुश्किल काम हो गया था और इसमें बड़ी ब्यूरोक्रेसी और वो GST का सिस्टम भी उतना लोड नहीं ले पा रहा। तो अब इन्होंने क्या करा कि जो व्यापारी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है उनको हर महीने जो रिटर्न फाइल करने की जो बात थी वो राहत मिली है और उनको अब 3 महीने में 1 बारी करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जो GST के सिस्टम में जो लोड था वो भी कम हो जाएगा और तकरीबन 90% उद्योग जो है जो टैक्स देते हैं जो रजिस्टर्ड है वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो एक तो ये हो गया छोटे उद्योगों के लिए और दूसरा अहम जो उन्होंने किया है कि आपको याद होगी ऑपोजिशन हमेशा कहती रही कि 28% बहुत ज्यादा टैक्स है, दुनिया में कहीं पे 28% GST नहीं है और इन्होंने करीब 1200 जो आइटम्स थी सब मिला मुलो के जो क्लास उनमें से कई तो 28 पे इन्होंने रखा हुआ था, तो जिससे थोड़ा सा महंगाई इन्फ्लेशन का भी रिस्क था क्योंकि पीछे कुछ इन्फ्लेशन बढ़ी है GST के आने के बाद। तो इन्होंने कई आइटम इन्होंने 28 से 18 कर दिया है और कई जो खाने की जो चीजें हैं जैसे पापड़ हुआ, खाकरा हुआ, जो नॉन ब्रांडेड जो प्रोसेस फूड बिकता है उसको कई 12% से 5 कर दिया है। मेरा मानना है कि ये केवल इस डर से किया कि कहीं बाद में इन्फ्लेशन और ना बढ़ जाए। तो ये 2 चीजें मेरे हिसाब से अहम है और आगे जाके ये इन्होंने कहा है कि इसको रिफाइन करेंगे जो सिस्टम को। सिस्टम में अभी भी खामियां बहुत है और मैंने जो GST जो कमेटी बनी है जो स्टेट मिनिस्टर्स की उनसे बात करी है, वो कह रहे हैं कम से कम 6 महीने लगेगा सिस्टम के सारे जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के जो सारे जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में।
इसके साथ ही कौन सी ऐसी चीजें हैं जो माना जा रहा था कि सरकार इनमें भी कुछ बदलाव कर सकती है लेकिन उन्हें निराशा हासिल हुई है?
देखिए निराशा तो एक लेवल पे कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो 1.5 करोड़ का इन्होंने जो लिमिट रखा है कि 1.5 करोड़ तक के जो टर्नओवर वाले सालाना उनको क्वार्टरली भरना पड़ेगा। अब अगर आप GST और दुनिया में देखें उसमें ज्यादातर $500,000 और $1 million तक लिमिट और देशों में है, तो अगर आप उसको इंडिया में अगर ट्रांसलेट करें तो ये लिमिट 3.5 करोड़ 4 करोड़ तक हो सकता था। कई लोग बोल रहे हैं कि 5 करोड़ टर्नओवर तक भी ये लिमिट रख सकते थे, इससे और भी राहत मिलती लोगों को। मोटा मोटी यही थी, एक तो रेट्स बहुत कम किए, दो रेट्स इतने कम किए कि एक तरह से एक मिनी बजट पेश हो गया है।
आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार एम के वेणु विश्लेषण कर रहे थे कि, और वो ये कह रहे थे कि सरकार ने एक तरह सा मिनी बजट पेश कर दिया है जीएसटी को लेकर।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। चीन और भारत के बीच कई देशों में आर्थिक मोर्चे पर मुकाबला हो रहा है, उसका असर श्रीलंका की सड़कों पर भी नजर आ रहा है। राजधानी कोलंबो के दक्षिण में स्थित मतल्ला एयरपोर्ट का प्रबंधन भारत को दिए जाने के प्रस्ताव पर श्रीलंका में विपक्ष ने प्रदर्शन किया है, कई पुलिस वाले घायल हो गए, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। बीबीसी संवाददाता विनीत खरे की रिपोर्ट।
श्रीलंका में यह पहला मौका नहीं जब देश की संपत्ति किसी विदेशी कंपनी को दिए जाने से लोग नाराज हुए हों। जब सरकार ने श्रीलंका के दक्षिणी छोर पर स्थित हम्बनटोटा पोर्ट को चीन को लीज पर दिया था तब भी प्रदर्शन हुए थे। श्रीलंका ने मत्तला एयरपोर्ट का प्रबंधन भारत को देने का प्रस्ताव किया है, इसके विरोध में कल भारतीय काउंसिलेट के निकट प्रदर्शन हुए। श्रीलंका की कोशिश है कि भारत और चीन जैसी दो बड़ी आर्थिक शक्तियों के साथ उसके संबंध अच्छे रहें। श्रीलंका की सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर रजिता सेनरत्ने कहते हैं,
हमने चीन के साथ हम्बनटोटा पोर्ट पर आखिरी फैसला कर लिया है। हम मत्तला एयरपोर्ट पर भारतीय पक्षों के साथ समझौता करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने यही बात कैबिनेट के सामने रखी है, मत्तला एयरपोर्ट भारतीय कंपनियों को मिलना चाहिए।
उधर विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। नमल राजपक्षे सांसद हैं और पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के पुत्र हैं। कल हुए प्रदर्शन में वो भी शामिल थे। महिंदा राजपक्षे के दौर में श्रीलंका में चीन ने कई परियोजनाओं की शुरुआत की थी। कुछ दिनों पहले बीबीसी से बातचीत में नमल राजपक्षे ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की तीखी आलोचना की थी।
At the moment, what we see, the current government is basically trying to balance the political, geopolitical aspect of it by privatizing certain national assets.
सरकार राष्ट्रीय संपत्ति का निजीकरण करके विभिन्न ताकतों के बीच संतुलन बिठाने की कोशिश कर रही है। हम्बनटोटा पोर्ट चीन को दे दिया गया और संतुलन बिठाने के लिए ही उन्होंने मत्तला एयरपोर्ट भारत को दे दिया है।
नमल राजपक्षे के मुताबिक भारत के सुस्त रवैये के कारण श्रीलंका को चीन का रुख करना पड़ा था, लेकिन विश्लेषकों के मुताबिक चीन बढ़े हुए दाम पर कर्ज देता है और दो देशों के बीच ज्यादातर समझौतों में विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन नहीं होता। आर्थिक मामलों के जानकार निशान डिमल कहते हैं,
Lack of imposing those checks and balances means contracts can be, you know, cleared and completed faster, and that was the excuse given.
प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर काम तेजी से होता है। चीन के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए यही कारण दिया गया था, लेकिन इससे खर्चे बढ़ते हैं और परियोजनाओं पर राजनीति हावी हो जाती है।
ऐतिहासिक कारणों से श्रीलंका में कई लोग भारत को शक की निगाह से देखते हैं, लेकिन जानकारों के मुताबिक उन्हें पता है कि छोटा देश होने के कारण श्रीलंका भारत और चीन दोनों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहेगा ताकि उसकी अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी हो। विनीत खरे, बीबीसी कोलंबो, श्रीलंका।
और अब बताते हैं आपको कार्यक्रम में आज यानी कि बीबीसी इंडिया बोल में आज किस विषय पर होगी चर्चा।
बीबीसी इंडिया बोल।
मूछें रखने के कारण गुजरात में दलित युवकों पर हमला, गरबा देखने पर हत्या। गुजरात जैसे प्रगतिशील राज्य में क्यों है निशाने पर दलित? दलितों के गुस्से का विधानसभा चुनावों पर कितना असर पड़ेगा? इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 और 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो शाम को बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम में हमें आपके फोन की प्रतीक्षा रहेगी। और अब कार्यक्रम में हम अखबार के पन्ने पलट लेते हैं। विकास, अखबार तो आप पढ़ चुके हैं, बताइए कि क्या कह रहे हैं। मैं देख रहा हूँ हर तरफ हेडलाइन जो है वो सब जीएसटी को लेकर है।
जी, जीएसटी को लेकर सरकार ने जो कल फैसला सुनाया था उसकी खबर हर अखबार पर है। इंडियन एक्सप्रेस शीर्षक लगाता है, छोटे उद्योगों के लिए जीएसटी राहत, कई ग्रुप्स के लिए दरों में कटौती। हिंदुस्तान टाइम्स भी अपनी पहली खबर इसे ही बनाता है और लिखता है, सरकार ने जीएसटी की दरों में बदलाव किया, निर्यातकों को राहत। जनसत्ता और अमर उजाला भी छोटे व्यापारियों को राहत दिए जाने की को पहली खबर बनाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस पहले पन्ने पर नीचे की तरफ जीएसटी में किए बदलाव को गुजरात चुनाव से जोड़कर एक खबर लगाते हैं और ये लिखते हैं कि जिन वर्गों को बड़ा फायदा हुआ है उनमें से ज्यादातर का ताल्लुक गुजरात से है।
हिंदुस्तान में जो सुर्खी लगाई हुई है उसमें एक बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है कि सराफा कारोबारियों को राहत मिली है, और ये ज्यादातर जो सराफा कारोबारी हैं वो गुजराती होते हैं, हम भी जानते हैं।
हिंदुस्तान टाइम्स अरुणाचल प्रदेश में हुए हेलीकॉप्टर हादसे को भी पहले पन्ने पर जगह देता है और लिखता है कि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 7 लोगों की मौत। इसके अलावा महात्मा गांधी की हत्या की जांच के फिर से जो किए जाने की याचिका थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील को नियुक्त कर लिया गया, तो उसको अखबार अपनी एंकर बनाता है। दैनिक भास्कर में खबर छपी है कि केरल के मंदिरों में पहली बार आरक्षण के आधार पर पुजारी चुने गए हैं। कुल 62 पुजारियों में से 36 गैर ब्राह्मण और 6 दलित शामिल हैं। ये पार्ट टाइम पुजारी पद थे और इसके लिए ना लोक सेवा आयोग की तर्ज पर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू भी लिया गया था। इसके अलावा बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप विश्व कप की तस्वीरें भी देखने को अखबारों में मिल रही हैं। कल दिल्ली में मैच हुआ था फुटबॉल का, इसमें अमेरिका ने भारत को हरा दिया था, प्रधानमंत्री मोदी भी देखने पहुंचे थे, तो इंडियन एक्सप्रेस इस मौके की तस्वीर लगाता है और लिखता है विश्व कप शुरू। जनसत्ता दिल्ली में 2 बच्चों के कार में दम घुटने से हुई मौत की खबर को छापता है। एक बच्चा इस कैब ड्राइवर का था और उसी कैब ड्राइवर का दूसरा भांजा था, दोनों की उम्र 6 और 4 साल थी। ड्राइवर लॉक करना भूल गया था गाड़ी, उसी में तो बच्चे दोनों उसी में चले गए थे, उससे दम घुट गया था उनका। इसके अलावा डाकघर जमा PPF और KVP के लिए आधार जरूरी के सरकार के फैसले का जो है उसको अखबार छापता है। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। जनसत्ता में एक खबर और है कि डोकलाम में यथास्थिति कायम, ये विदेश मंत्रालय ने कहा है, तो ये उस बयान को छापते हैं।
एक बहुत ही रोचक खबर है अमर उजाला में कि कश्मीरी पंडित जो हैं वो बेटियों का उपनयन संस्कार करा रहे हैं और समाज में बेटियों को लेकर चेतना जगाने की जो मुहिम है वो अब रंग ला रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास त्रिवेदी आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। चर्चा फुटबॉल की हो रही है तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्था फीफा का आयोजन और उसमें बजा भारत का राष्ट्रगान। फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। विश्व कप फुटबॉल में इस समय भारत का 107वां स्थान है, लेकिन ऐसे 3 फुटबॉल मैच भी हुए हैं जब भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों ने अपने कौशल का लोहा मनवाया। इन मैचों का जिक्र है नूवी कपाड़े की किताब बेयरफुट टू ब्रूट्स। आज की विवेचना में रेहान फजल याद कर रहे हैं उन बड़े फुटबॉल मैचों को।
जुलाई 1911 को भारतीय फुटबॉल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन कलकत्ता के क्लब मोहन बागान ने IFA शील्ड के फाइनल में अंग्रेजों की टीम ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराकर इतिहास रच दिया था। इस मैच का क्रेज इतना जबरदस्त था कि इसको देखने के लिए दर्शकों को लाने के लिए ईस्ट इंडियन रेलवे ने पास के राज्यों असम और बिहार से कलकत्ता के लिए खास ट्रेनें चलाई थी। बेयरफुट टू बूट्स द मैनी लाइफ्स ऑफ इंडियन फुटबॉल के लेखक नोवी कपाडिया बताते हैं,
केवल 10 लाख की आबादी में इतना रुचि हो गया था कि स्पेशल ट्रेन आए के लोगों को लाने के लिए। स्टेडियम तो थे नहीं, तो लोग जो खड़े हुए, जिन्होंने हमेशा वो होशियार लोग होते जो व्यापारी होते, उन्होंने लकड़ी के डब्बे ले आए वहाँ और चार आने लेते थे, ये डब्बा हम तुम्हें देंगे, तुम उस पर खड़े होकर मैच देखना। इतनी कैपेसिटी तो थी नहीं, और जो कुर्सियाँ थी वो केवल अंग्रेज़ों के लिए थी। तो भारतीय जनता जो आई है वो शुरू में जो आ गए वो तो बैठ गए, लेकिन पीछे की जनता को तो कभी मैच दिख भी नहीं रहा था। लेकिन ये एक राजनीतिक मैच था कि एक भारतीय टीम अंग्रेज़ टीम के विरुद्ध फाइनल में खेल रहे, और लोग आए और उन्हें मैच पूरी तरह दिख भी नहीं रहा था, तो पतंग उड़ाई जाती थी, और पतंग मोहन बगान के रंग में थी, मरून और ग्रीन, जो हमेशा मोहन बगान ने ये जर्सी पहना हुआ है। तो उस पतंग पे स्कोर लिखा था 0-0, 0-1, 1-1, तो जो पीछे लोग थे वो बस उसी में खुश थे, तालियां बजाते थे।
पहला गोल अंग्रेजों की तरफ से सार्जेंट जैक्सन के पैर से आया था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मोहन बगान के शिवदास भादुड़ी ने गोल उतार दिया था। इसके बाद अभिलाष घोष ने विजयी गोल मारकर वो कर दिखाया था जिसकी कम से कम उस समय तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।
कभी भी कोई भारतीय टीम फाइनल नहीं पहुंचा था, तो एक वो ऐतिहासिक इंसिडेंट हो गया, तो सब कालीघाट के मंदिर पे गए थे और उसमें रेवरेंड सुधीर चैटर्जी भी थे जो क्रिश्चियन थे, बाद में प्रीस्ट वगैर भी बने, लेकिन वो भी साथ में टीम स्पिरिट था, तिलक लगाया। उस समय ये था कि हर कम्युनिटी के लोगों में उत्साह था, ये नहीं था कि केवल मोहन, खैर ईस्ट बंगाल तो तब शुरू नहीं हुआ था लेकिन मोहम्मडन स्पोर्टिंग थे, लेकिन मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने भी मोहन बगान का स्वागत किया था जब मोहन बगान जीती।
एक कहानी ये भी मशहूर है कि मोहन बगान की उस टीम के स्टार खिलाड़ी सुधीर चैटर्जी को मैदान में पहुंचने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था।
देख तो सुधीर चैटर्जी थे वो टीचर थे कॉलेज में, तो शुरुआत में अंग्रेज़ों के हाथों में होता था कॉलेज सारे, तो शुरुआत में उनको कॉलेज में ज़्यादा देर रखते थे कि वह मैच के लिए ना पहुँचे। अंग्रेज़ी टीम को भी पता लगा कि मोहन बगान ये दफ़ा बहुत शक्तिशाली टीम है, बहुत कठिन होगी हराने, तो ब्रिटिश टीमों को इसका भी डर था, तो सुधीर चैटर्जी को पहले लेट भेजते थे। फाइनल के दिन वो समझ गए तो वो छुपके से पीछे के गेट से निकल गए कि लेट ना पहुँचे मैच में। और वह ये लोग कहते हैं, वो जो फिल्म भी बनी है एगारो, उसमें भी ये सीन है कि जब सुधीर चैटर्जी डिफेंडर थे तो क्लियरेंस करते थे, लंबे अच्छे कद के आदमी थे, तो चीयरिंग जो मोहन बगान के लिए तो सारे भारतीय लोग करते थे, अंग्रेज़ तो उस समय चुप रहते थे। एक लड़की उठ जाती थी, यंग ब्लॉन्ड, जैसे वो लगान वाली फिल्म का सीन था, तो वो सुधीर चैटर्जी के लिए हर दफ़ा वो बॉल टच करते थे, तो वो कुछ लोगों का कहना है एलिमेंट ऑफ रोमांस था।
भारतीय फुटबॉल का एक और ऐतिहासिक मैच था जब भारतीय टीम ने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक खेलों के क्वार्टर फाइनल में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। ये मैच भारत 4-2 से जीता था और सेंटर फॉरवर्ड नेविल डिसूजा ने हैट्रिक की थी। उस टीम के सदस्य और बाद में भारत के कोच बने पीके बैनर्जी को वो मैच अभी भी याद है।
वो मैच में नेविल जो फुटबॉल खेला वो तो देखने का लायक था, खाली वो हैट्रिक नहीं, हैट्रिक तो कभी आज तक हिंदुस्तान का कोई खिलाड़ी फुटबॉल में कभी ओलंपिक में हैट्रिक किया ही नहीं। नेविल ने क्या गोल किया, इतना नाजुक उसका पैर का टच था, देखने का लायक। लास्ट गोल जो किया था, गोलकीपर को काट के गोल किया, हमारा बैक पास उसको मिला ओपन, वो शूट करके गोल कर सकता था, मगर उसका इतना आत्मविश्वास कि वो उसको लेके गोलकीपर को काटा, इत्मीनान से काट कर डाल दिया जाल में।
नेविल डिसूजा को इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए उनके साथ हुई मेलबर्न में घटना ने प्रेरित किया था।
तो ये जब मेलबर्न गए तो नेविल डिसूजा साहब निकले कि थोड़ा मेलबर्न घूम लेते, तो डबल डेकर बस में बैठे, तो वो ओलंपिक का उनका वो कार्ड था, तो जो बस में लोग थे वो सब आए, वेयर यू फ्रॉम, कहाँ से हो, तो इंडिया, तो इज़ इट हॉकी, नो 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 फुटबॉल, तो लोग हंसने लगे, अरे फुटबॉल तो इंडिया का कभी नाम भी नहीं सुना, तो किससे पहला मैच है, दे सेड ऑस्ट्रेलिया, दे सेड ओ चलो यू नो हैव अ चॉकलेट बिकॉज यू आर गोइंग बैक, तुम तो हार के चले जाओगे वापस। तो डिसूजा को बहुत उस समय वो गुस्सा लगा था कि सब हमारा मजाक उड़ा रहे, कि इंडियन फुटबॉल खेलने नहीं जानते, तो बहुत जोश में थे।
सेमीफाइनल में भारत योगोस्लाविया से 1-4 से हार गया, लेकिन वहां भी पहला गोल भारत ने ही किया, भारत के खेल की हर जगह तारीफ हुई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में भारत की सबसे बड़ी जीत 1962 के जकार्ता एशियाई खेलों के फाइनल में दक्षिण कोरिया के खिलाफ हुई। ये मैच भारत 2-1 से जीता, और वो तब जब मैदान में बैठे सारे 110,000 दर्शक भारत के खिलाफ थे।
इंडोनेशिया जो नॉन अलाइन मूवमेंट का एक भाग था, तो इसराइल और ताइवान जिसे आजकल बुलाते, उन दोनों को इंडोनेशिया ने अनुमति नहीं दी थी खेलने के लिए, कहते राजनीतिक कारण के लिए हम आने नहीं देंगे। तो चलो ये उनका मामला था, सोंदी साहब थोड़े पुराने विचार के थे, वो जो एवरी ब्रंडेज और आईओसी के स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स शुड नॉट मिक्स, तो उन्होंने अखबारों में ये स्टेटमेंट दे दिया। तो इंडोनेशिया के अखबार पत्रकार और जो दर्शक थे उन्हें बहुत नाराजगी हुई कि वैसे तो इंडिया हमारा दोस्त बनता है और अब हमारी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो सारी इंडियन टीम के विरोध हो गए और फुटबॉल टीम धीरे धीरे अच्छा करती रही, फाइनल पहुंची। तो इतना कठिन हो गया था कि जब टीम बस गेम्स विलेज से ग्राउंड जा रही थी तो जर्नैल सिंह को बस के जमीन पर रहना पड़ा, क्योंकि वो सरदार थे तो पगड़ी पहनते थे हमेशा, तो वो दिख जाती कि इंडियन टीम है, तो वो लोग पत्थर फेंकते थे बस पे, इतना कठिन था वो।
इस मैच का डिफाइनिंग मोमेंट तब आया जब कोच रहीम ने गंभीर रूप से घायल हो चुके फुलबैक जर्नैल सिंह को सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खिलाने का फैसला किया।
लीग मैच में थाईलैंड के विरुद्ध जर्नैल जो स्टॉपर खेले डिफेंडर थे उनका सिर कट गया था, 8-10 स्टिचेस लगे थे, तो वो हेड कर नहीं सकते थे। तो फिर रहीम और चुन्नी ने डिसीशन लिया कि जर्नैल वो एक जो आजकल की फुटबॉल में टारगेट मैन रहेंगे, शक्तिशाली आदमी, अच्छा वो पैर उठाते थे दूसरे के सिर तक, इतने फिट थे, तो वो कहते वो छाती से रोकेंगे, वन टच हमें देंगे, और दूसरी टीमें इनसे वो एशिया के टॉप डिफेंडर गिने जाते थे, तो एक वो माइक टाइसन वाले थे, लोग डरते थे उनसे, तो कहते वो फायदा होगा। और जर्नैल खेले थे सेंटर फॉरवर्ड अपने कॉलेज डेज में, बिल्कुल भी नई चीज़ नहीं थी, तो जर्नैल को ऐसे खिलाया पीके बैनर्जी, जर्नैल, चुन्नी गोस्वामी और बलराम, और यूसुफ खान विड्रॉन हो गए उस समय। तो जर्नैल ने ये साउथ वियतनाम के साथ शुरू किया सेमीफाइनल में, और फिर फाइनल में भी खिलाया, और वो एक कमाल की रणनीति थी।
मैच से एक दिन पहले कोच रहीम ने सारे खिलाड़ियों को जमा कर कहा कि उन्हें उनसे एक तोहफा चाहिए।
रहीम ने ये दो चीजें बोली, एक तो बोला ऑफसाइड नहीं खेलना क्योंकि क्राउड चिल्लाती रहेगी, तुम खड़े रहोगे, दर्शकों में किसी ने सीटी बजा दी तुम खड़े हो जाओगे, तो कहता पीछे हट के खेलना, आगे डिफेंडर ज्यादा नहीं जाना। और जो सबसे मतलब जिसे प्रोत्साहन मिला कि कहता है वो किस्मत थी कि 15 अगस्त को टीम ने यात्रा के लिए चले कलकत्ता से, ब्रॉडवे होटल में ठहरे हुए थे, और 15 साल स्वतंत्रता के बाद था, तो कहता है कि जैसे फ्रीडम फाइटरों ने और महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता दिलाया, जिस ब्रिटिश एम्पायर जो कहते थे जिसका सूरज कभी डूबता नहीं है, कहता वो कर सकते थे, तो हमने एक सिर्फ फाइनल जीतना है दक्षिण कोरिया से, तो इनसे डरो नहीं, और सब ने झंडा को छुआ उस समय, तो वो उन्हें बहुत इंस्पायर किया रहीम ने। और कई लोगों को मालूम नहीं है कि रहीम साहब को अंदाज़ा हो गया था कि वो कैंसर के मरीज थे, उन्हें पता था ये आखिरी मौका है कि एक विदेशी देश पे जाके गोल्ड मेडल जीते। उन्होंने एक रात पहले भी पीके बैनर्जी बगैर को बोला था कि आप लोगों से एक तोहफा चाहिए, सोना जीत के आना। तो वो एक इंस्पिरेशन से गए हैं, और जो जो खिलाड़ी जिनसे बात होती वो कहते कि हम इतना अच्छा पहले हाफ में भारत खेले कि कम से कम 5 गोल आगे होने थे, खैर 2 ही किए, जर्नैल ने पहला किया और पीके बैनर्जी साहब ने विनिंग गोल किया। कहता हम इतने आक्रमण में गए कि दक्षिण कोरिया हिल गए, खैर अल्टीमेटली 2-1 से जीते।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
और जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत में कल से अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ, और जो पहला मैच खेला गया उसमें अमेरिका ने भारत को हरा दिया है। अमेरिका ने भारत को इस मैच में 3-0 से हराया। अमेरिका के लिए पहला गोल पेनल्टी के सहारे कप्तान सार्जेंट ने दागा। अमेरिका की ओर से दूसरा और तीसरा गोल डर्किन और कारा लेटोन ने किया। अब भारत का अगला मुकाबला 9 अक्टूबर को कोलंबिया व उसके बाद 12 अक्टूबर को घाना से होगा। ये पहला मौका था जब भारत पहली बार किसी भी वर्ग में फीफा के मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उतरा था। इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। भारत ग्रुप ए में शामिल है जिसमें अमरीका व कोलंबिया जैसी मजबूत टीमें हैं, और टूर्नामेंट का फाइनल मैच कोलकाता में खेला जाएगा। कार्यक्रम में इससे पहले आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल बैठक के बाद कई अहम फैसले लिए। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी के दायरे में छोटे व्यापारियों के लिए छूट का ऐलान किया। इस छूट के तहत अब छोटे व्यापारियों के लिए हर महीने जीएसटी रिटर्न की अनिवार्यता को खत्म किया गया। अमरीका में ट्रंप प्रशासन ने महिलाओं को मुफ्त गर्भ निरोधक मुहैया कराने के नियम में बदलाव किया है। इस नियम का असर 6 करोड़ अमरीकी महिलाओं पर होगा। साबाडेल के बाद अब कैटालोनिया के एक और बैंक कैक्सा ने अपना कानूनी मुख्यालय कैटालोनिया से बाहर ले जाने का फैसला किया है। ये फैसला कैटालोनिया में हुए जनमत संग्रह के बाद तेज होती आज़ादी की मांग के मद्देनजर लिया गया। द तथाकथित इस्लामिक स्टेट ने अब महिलाओं को युद्ध में उतारने का फैसला किया है। अब तक महिलाओं को अपने लड़ाकों की पत्नी और अगली पीढ़ी के लड़ाकों को पैदा करने के लिए इस्तेमाल करने वाले संगठन को अब कई मोर्चों पर हार का सामना करना पड़ रहा है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के अंक में बस इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम। शाम को 7:30 बजे बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। bbchindi.com के पन्ने पर आते रहें। नमस्कार।